संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार का प्रश्न नंबर 150, 81 और 82 में गाथा हो जाने के बाद मानो एक बात समाप्त हो गई, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए आचार्य जिनसेन की टीका में एक गाथा ऐसी उपलब्ध होती है जो आचार्य अमृतचंद वाली टीका में नहीं है, और वो गाथा भी मंगलाचरण की गाथा ही है। बीच बीच में मंगलाचरण की गाथाएं आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि अमृतचंद्र देव को ये गाथाएं या तो उनकी उस पुस्तक में थी नहीं, अथवा उनको ऐसा लगा कि भाई ये बीच में आ गई तो ये तो विषय को और भंग करती है। अभी देखो 82वीं गाथा में कहा, 80 में कहा कि जो दुर्गुण पर्याय से अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। फिर 81 में कहा कि ये दर्शन मोह के नाश की विधि हुई और चारित्र मोह के नाश की विधि उन्होंने बताया, इसी में और राग द्वेष मोह को छोड़ने वाली जो वृत्ति है अंतर्मुखी वो चारित्र मोह को नाश की विधि है, और सभी अरहंतों ने इसी विधि से मोक्ष गए हैं और सबको यही विधि बताई। अब उसके बाद पूरा प्रकरण यहीं से जिसमें गेय तत्व प्रज्ञापन भी है, वो कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को जाने, माने 6 द्रव्यों को जाने, तो वो सब द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन आगे करने वाले हैं। फिर एक द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार, ये वर्णन है, 2 अधिकार हैं उसमें। और फिर तीसरा अधिकार है ज्ञान गेय विभागाधिकार, इनको ज्ञान और गेय में बांटें। तो एक तरीके से यहीं से पूरी बात बदल जाती है। फिर भी इन्होंने ज्ञान तत्व विज्ञापन में 91 तक की गाथा को ले गए, 92वीं गाथा से गेय तत्व विज्ञापन लिया। अब ये जो गाथा बीच में आ गई आचार्य जयसेन की टीका में, जिसने सिर्फ भगवान को नमस्कार किया है और कुछ नहीं है, नहीं देवसास गुरु को नमस्कार किया है, खास करके मुनिराजों को, गुरु को नमस्कार किया है बीच में। यदि वो मंगलाचरण करते आचार्य देव तो गुरु तो वे खुद ही हैं, वे हैं और उन जैसे और आचार्य हैं, वे करते तो फिर वो अरहंत की बात थी तो अरहंत को करते। और नमो तेसिम ये गाथा तो उनने उसमें की ही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं, सभी अरहंतों ने इसी प्रकार की विधि बताई है और हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो इनने साथ में गुरुओं को भी कर दिया। पढ़ते हैं इस गाथा को, पढ़ो।
दर्शन शुद्धा पुरुषा राण पहाड़ा समग्र चरियत्था पूजा सत्कार रिहा गाणस्य हिते नमो तेसम।
उसमें भी नमो तेसम है ना, व्यासी गाथा में देखो, व्यासी में भी देखो नमो तेसम, और बिल्कुल नमो तेसम भी है उसमें, अरहंत को है, जितने भी अरहंत हुए हैं उन सब की बात है ना, उनने यही रास्ता बताया है इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। यहां भी नमो तेसम, लेकिन जो दर्शन से शुद्ध है माने सम्यक दृष्टि है, राण है प्रधान जिनके सम्यक ज्ञान है, और सम्यक चारित्र से जो पवित्र हैं, ऐसे मुनिराज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी, उनको मैं नमस्कार करता हूं, और वे ही पूजा सत्कार और दान के योग्य हैं। अब ये दान के योग्य है कि क्या मतलब दान में सर्वश्रेष्ठ पात्र, अब मैं कहते हैं ना पात्र होते हैं ना, किसको पात्र को दान देना चाहिए ना, तो सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है? मुनिराज, जिनके पास कुछ नहीं है और जो किसी से कुछ लेते नहीं है और अपना सब कुछ छोड़ के घर से निकले हैं, यदि वे दान के पात्र हैं तब क्या रह गया दान के लिए? बहुत से बहुत आहार ले लेंगे बस वे, और तो तुम्हारा रुपया पैसा तो लेने वाले हैं नहीं, कपड़ा लत्ता उन्हें चाहिए नहीं, अगर आहार ले लेंगे कि बहुत से बहुत ज्ञान की बात है, तो उनसे भी बड़े जो आचार्य गुरु होंगे उनसे ज्ञान लेंगे, वो तो अरहंत भगवान से ही ज्ञान लेंगे ना, जनमानी से हैं, तो वे दान के पात्र भी वे ही हैं और पूजा के योग्य, पूजा माने सम्मान, सम्मान के पात्र भी वो ही हैं और पूजा के और दान के पात्र वे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, माने सर्वश्रेष्ठ पात्र वो हैं। अपने शास्त्रों में ये भी आता है कि दान दाता पात्र और उस वस्तु पर इतना निर्भर नहीं करता जितना जिसको दिया जा रहा है उस पर निर्भर करता है, जिस प्रयोजन से दिया जा रहा है उस प्रयोजन पर निर्भर करता है। देखो रोजाना पूरे देश में अरबों रुपए का दान होता है, पर अपने दिगंबर जैन समाज के लेवल पर भी कोई दान की तो छड़ी लगी ही रहती है, कोई भी कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा कर देता है और उसके लिए पैसे की झड़ी लग जाती है। ये समाज की जो ये वृत्ति है दान देने की, इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लेकिन विवेक पूर्वक पात्रता की दृष्टि से दिया गया दान का महत्व है, उसमें कितना पैसों से गिनती नहीं हो सकती, पैसे नाम का कोई दान ही नहीं है। अब मुनिराज जो दान के सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं तो उनको भी मैंने बोला ना दो ही दान दिए जा सकते हैं, एक आहार दान और एक ज्ञान दान। तो ज्ञान दान देने के हम अधिकारी कहां हैं? कोई बड़े विद्वान आशाधर जी जैसे, टोडरमल जी जैसे हों, वे मुनिराजों को भी पढ़ाते थे, उनका भी महाभाग्य था, मुनिराजों का भी महाभाग्य था और हम सबका भी महाभाग्य था, क्योंकि वो ग्रस्त अवस्था में रहकर और दुनियादारी में न उलझकर, पुण्य पाप के कार्यों में ना उलझकर, सामाजिक राजनीति में ना उलझकर, झगड़े तंत्रों में ना उलझकर और ज्ञान दान देने में ही जिनको रस था, तो आहार दान से भी महान है, और उसके लिए ऐसे पात्र उन्हें मिलें जो मुनिराज मुनि की अवस्था में हों। अमृतचंद का नाम भी उसमें आता है, अमृत किन में के पंडित आशाधर जी जिन मुनिराजों को पढ़ाते थे उसमें अमृतचंद का भी नाम था, ऐसा लेख मिलता है कि ठक्कुर अमृतचंद्रादि मुनिराज उनके पास पढ़ते थे। तो ठक्कुर शब्द लिखा है तो ये लिखते ये क्षत्रिय जाति के थे अमृतचंद, और ये भी है कि वो उनके पास पढ़ते थे, तो वो तो कितने महान थे। टोडरमल जी के बाद यदि पिछले पीछे हम जाके देखते हैं तो एक आशाधर जी ही ऐसे महान विद्वान दिखते हैं गृहस्थ अवस्था में, कि जिन्होंने पहले अनागार धर्मामृत लिखा और फिर सागार धर्मामृत लिखा। अनागार धर्मामृत माने मुनिराज को का चरित्र कैसा होता है इसका वर्णन उन्होंने किया, अभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि मुनिराज 28 मूल गुण होते हैं और ऐसे होते हैं, ये सब बातें तो खैर लिखी ही होंगी, लेकिन नयों का जितना सुंदरतम वर्णन, जितना विशद वर्णन अनागार धर्मामृत में मिलता है वो और शास्त्रों में नहीं मिलता। मैंने नए चक्र का लिखा था ना, जब सब अध्ययन किया तो अनागार धर्मामृत के बहुत छंद हैं। पुरुषा सिद्धि उपाय में उन्हीं के उसमें लोग अमृत चंद्राचार्य ने लिखी ना, तो उसमें एक वाक्य लिखा कि जो व्यक्ति मुनि धर्म का उपदेश दिए बिना श्रावक धर्म का उपदेश देता है वो दंड का पात्र है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, दंड का पात्र है। माने उन्होंने कहा क्यों लिखा, हेतु दिया, अपदेति संतृप्ता, क्योंकि यदि हम उसे समझाते तो वो इतना पात्र था कि मुनि दीक्षा ही ले लेता, लेकिन हमने पहले उसे श्रावक धर्म समझाया तो वो उससे प्रभावित हो गया, तो उसने उसमें दीक्षा ले ली। तो जो मुनि दीक्षा ले सकता था कि योग्य पात्र था, वो अपद में तृप्त हो गया। क्या समझे भाई, मेरे हो गया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने नियम ले लिए, प्रतिज्ञा ले ली, तो ये अपराध है। ये कहते हैं पहले मुनि धर्म का स्वरूप बताओ, तो वहां तो भैया डर है ही नहीं कि वो दीक्षा ले लेगा। यदि वो नहीं ले पाएगा, नहीं लेगा, तो फिर हम श्रावक धर्म समझाएंगे, तब श्रावक धर्म की ले लेगा। क्या हमको ये लगता है कि पहले श्रावक धर्म पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी चीज है। पहली अब पहली क्लास की चीजें पहले पढ़ाएंगे या तो पांचवीं क्लास की चीजें पहले पढ़ाएंगे? इस क्रम से हमें श्रावक धर्म पढ़ाना चाहिए और फिर बाद में मुनि धर्म पढ़ाएं। लेकिन उनने उल्टी बात कही, तो वो ही बात जो पंडित आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी, उनने उसे प्रैक्टिकल अपनाया। और कहीं किसी का नहीं मिलता है। और किसी का तुम्हारे ध्यान में आया तो बताना मुझे शांति जी, कि जिसने पहले वर्णन लिखा हो मुनि का और श्रावक का दोनों का, तो पहले मुनि का लिखा हो बाद में का। माने एक किताब एक है, दो नहीं है। सागा धर्म में तो अनगा धर्म में दो नाम आते हैं ना, लेकिन जो ज्ञानपीठ से छपी है तो उसमें किताब का नाम लिखा है ज्ञानामृत, धर्मामृत नाम लिखा धर्मामृत, और नीचे लिखा अनगार, और फिर दूसरे में लिखा सागर। माने धर्मामृत किताब का नाम है और उसका पहला खंड अनगार है और दूसरा खंड सागर है। ऐसा माने दो किताबें नहीं है। इसमें एक बात मैं आपको ये भी बताऊं कि अनगार धर्मामृत में इतना विस्तार से वर्णन किया है कि बाद में इतना मुनिराजों के संदर्भ में इतना विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। मिलता है तो वो जो है ना थोड़ी भगवती आराधना वगैरह उनमें मिलता है। और भगवती आराधना एक बहुत मार्मिक मुनिराजों के स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। बहुत 2200 से ज्यादा गाथाएं होंगी उसमें, और भी ज्यादा कम हो सकती हैं। मैंने काफी बड़ा ग्रंथ है प्योर प्राकृत भाषा में, उसको प्योर संस्कृत भाषा के छंदों में अमित गति आचार्य ने पूरा बदल लिख दिया, और उन्हें 2200 भी 2600 कर दी होंगी गाथाएं। मैंने विषय नहीं, उनको पूरा लगा होगा और खुद अपनी तरफ से कुछ लिखने का भाव उसमें बीच बीच में आया होगा। लेकिन पूरा प्राकृत का संस्कृत में, और उसका नाम रखा मरम कंडिका। फिर पंडित आशाधर जी का नंबर आता है कि आशाधर जी ने अनगार धर्मामृत और सागर धर्मामृत लिखा। जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त सागर विद्यालय, बनारस विद्यालय, इंदौर विद्यालय और मुरैना विद्यालय, ये चार विद्यालय प्रसिद्ध थे। हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे। उसका एकमात्र कारण ये था कि हमारे गांव से जिस रेलवे स्टेशन पर बैठते थे وہاں سے مورینا سیدھا, گاڑی نہیں بدلنی پڑتی تھی, سیدھے ہم پہنچ جاتے تھے. اور بنارس جائیں تو دو گاڑیاں بدلنی پڑتی تھی, ساگر جائیں تو ابھی بینا پہ گاڑی بدلنی پڑتی تھی, بنارس جائیں تو ابھی گاڑی بدلنی پڑتی تھی. اور اس وقت گاڑیاں میں ریزرویشن ہوتے نہیں تھے, اور اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ گاڑی میں بیٹھ کے چڑھنا مانے اس میں تو بہت مہا یدھ جیتنا ہے. ایک جوڑی کپڑے تو گاڑی میں ہی پھٹ جاتے تھے. تو ہم نے سب بھوگا ہے خود, ہم اور بڑے دادا نے سب نے بھوگا ہے. ہمارے پتا جی بہت سیرے سجن دھرماتما پرکتی کے آدمی تھے, تو وہ ہم کو بیٹھا کے آتے تھے ریلوے اسٹیشن پر, اور ہم پھر مورینا میں اتر جاتے تھے. جب تک ہم نے پڑھا 7 سال 6 سال وہاں, ہمارے پتا جی نے مورینا نہیں دیکھا. یہ ابھی ہم یہاں سے لے گئے تب ہم نے انہیں دکھایا ایک دفعہ, بولے تمہیں ہمیں بتا دو تو وہ ودیالیہ جس میں تم پڑھے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ساگا دھرما میں اکیلے مورینا میں پڑھایا جاتا تھا, اور سب جگہ سربا پرساد دیوپائے پڑھایا جاتا تھا. اور ہم کو ایسا لگتا تھا کہ سمجھایا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ پنڈت آچاریہ جی بیس پنتھی ودوان تھے. کیا اس لیے پنڈت مکھن لال جی اپنے ودیارتھیوں کو پرساد سدھی اپائے نہیں پڑھا کر ساگر دھرما میں پڑھاتے, اور وہ پرساد سدھی اپائے پنڈت مکھن لال جی جو ہمارے گرو جی تھے, ابھی وہ آج دادا کا جنم دن ہے نا, تو میرے کو سب یاد آ رہا پرانی چیزیں. سر تم ایسا میں سمجھنا کہ بھائی میں آپ کو کہاں سے کیا بات لے, لیکن مرم کی باتیں ہیں سب. تو وہ ساگا دھرما میں وہ اس لیے ہمیں پڑھاتے تھے, ہم کو پرساد سدھی اپائے نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو ہم لوگوں نے اس وقت پرساد سدھی اپائے کو بھی یہاں وہاں سے جٹا کر لے کر, اور ہم نے وہ بھی پڑھی کہ دیکھے تو اس میں کیا فرق ہے. اب آج ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا وہاں بھاگ تھا, کوئی ایسا کوئی بیس پنتھی پنت ہمیں تو آتے ان کے دیکھنے میں کچھ آیا نہیں ہے. کیسی کوئی بات آئی ہو بیچ میں کچھ, تو ہمیں ایسا دھیان نہیں جس میں اتنا بھید پڑتا ہو 13 پنتھی اور 20 پنتھی کا. لیکن وہ بھٹارک اس سمے بھٹارکوں کا پربھاؤ بہت ہو گیا تھا نا, شروع ہوا تھا, تو جو تیرتھوں پہ جن پہ سنستھاؤں پہ بھٹارکوں کا قبضہ ہو گیا تھا, اور ودوان کسی نہ کسی سنستھا کے سہارے تو رہتے ہی ہیں. تو یہ اپنے پنڈت جو ہے نا کون پانڈے راجمل جی, یہ بھی وراٹ نگر کے بھٹارک کے یہاں رہتے تھے. اب یہ کتنے اتکرشٹ ادھیاتمی ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہے پنچادھیائی, اور مکھن لال جی نے پنچادھیائی کی ٹیکا لکھی ہے. سمجھے نا میرے کہنے کا مطلب, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, میں نے ایسا کچھ تھا نہیں, لیکن یہ زہر سماج میں پھیلتا رہتا ہے. اور جو اتکرشٹ کوٹی کے ودوان ہوتے ہیں آچاریہ جی جیسے, ٹوڈر مل جی جیسے, ان کو اس چھدر مانسکتا میں بہت سے لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں. ایسے ٹوڈر مل جی کو میں نے بولا نا کہ ٹوڈر مل جی کا موکش مار پرکاشک ہمیں ہاتھ لگ گیا تھا, ہمیں مولانا ودیالیہ میں پڑھتے وقت لائبریری کا کام ہمیں سونپا تھا سنبھالنے کا, تو ہم لائبریری کے اٹھا کے ایک ایک کتاب کا نام وام لکھ کر اسے وہ سب کر رہے تھے. اس میں موکش مار پرکاشک آ گیا ہاتھ میں, تو ہم اسے پڑھنے لگ گئے تو ہمارے گرو جی نے آگے دیکھا, کیوں کیک پڑھتے ہو, اٹھا لیا ہم نے چھین لیا, کیوں ایک پنڈت کا گرنتھ ہے, تم تو ودوان ہو, تمہیں سنسکرت کے گرنتھ پڑھنا چاہیے. ہم نے بس ایسے درشن کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پھر بہت دن بعد ہمیں وہ ملا, کیوں اتنا آسان نہیں تھا ملنا, گرنتھوں کا ملنا اس وقت بہت کٹھن کام تھا, ہر ایک کو سہجتا سے اپلبدھ نہیں ہوتے تھے آج جیسے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انگار دھرمامت میں काफी बड़ा है, नयों का पूरा विस्तार से वर्णन है, और भी महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन उसमें समाधि के वर्णन का वर्णन नहीं है, संलेखना का वर्णन नहीं है। फिर सागर धर्म में थे ना, तो सागर धर्म में तुम्हें संलेखना का वर्णन है, माने उसमें ऐसे अध्याय जैसे 9 अध्याय शायद उसमें है और 8 अध्याय इसमें है, 17 अध्याय है। तो उनने जो छापी है भारतीय ज्ञानपीठ ने ज्यादा, उसमें 9वां से 10वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, तो संलेखना का अधिकार ऐसे में तो आता है 7वां 8वां, और वैसे में आता है 16वां 17वां। क्या माने, अब पूरा एक ही किताब है ना धर्मामृत, तो संलेखना का अधिकार तो हो गया उसमें। अब हम काय का बोले, सागर धर्मामृत का बोले कि अनागार धर्मामृत का, वो तो धर्मामृत में है, लेकिन मुनिराजों का प्रकरण पूरा समाप्त हो गया। मैं पहले ही एक पंक्ति लिख चुका था जब मैंने इस बात को देखा सोचा, क्योंकि मैं तो शराबकों की दृष्टि से लिख रहा हूं और अपने मुद्दे से लिख रहा हूं, मुनिराजों पर लिखना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह की प्रवृत्तियां वर्तमान में हैं उससे राग द्वेष की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसलिए मैं उसमें कुछ लिखना नहीं चाहता हूं। और मुनियों का जीवन तो समाधिमय ही है, और उसमें मुझे बहुत तर्क मिले, फिर वो कहते वो जिसमें तो ये लिखा कि अपने पुत्रों को संपत्ति बांट देवे, जिसको देना है दे देवे, मंदिर को दे देवे, ये कर देवे, सबसे माफी मांग लेवे, स्त्री से पुत्र से। अब ये तो सब काम मुनिराज हो गया तो पहले ही निपटा चुके, यदि मुनिराजों के लक्ष्य से लिखा होता तो ये बात क्यों लिखते, है ना? उनका तो जीवन स्वयं बहुत, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों की समाधि में बहुत अंतर है, एक दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। उनका तो जीवन ही समाधिमय है। अब तुम आहार का त्याग करोगे तो एक आसन करना, नक्की करोगे मैं एक दफे दिन में खाऊंगा, वे तो एक दफे तो खा ही रहे, एक दफे खाते तो जिंदगी निकल गई उनकी, जितने वर्ष की दीक्षा है उतने ही वर्ष निकल गए। फिर मैं ये लूंगा ये नहीं लूंगा, दवाई उवाई ये कहां नक्की होता है, उनमें कौन से वैद्य के पास जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो तो शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा है, अपने इसमें भी लिखा प्रतिदिन सार में आएगा, फिर वो आचार्य उनको बताएं, फिर गृहस्थ से भी कहें कि इन महाराज को आज आहार में ये दवाई दे देना, वो बता दें सौंठ दे देना, पीपल दे देना, सौंठ मेरे मुंह से निकल गया, वो भक्त भक्ष का चक्कर में मैं बचना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहते मान लो कि जो बिल्कुल भक्ष पदार्थ है कि वो आज इनके आहार में काली मिर्च डाल देना, ये कर देना, ये देना, तो वो ऐसा मार्गदर्शन गृहस्थ को भी देने की बात लिखी। अब जहां अपन उद्दिष्ट के त्याग की बात करते हैं उसमें ये कहां बैठेगा, इसमें लिखा है संसार में। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी तो दवाई वगैरह कहां है, मैंने कल बोला था ना आपको, जब मैंने सोचा तो सबसे पहले दवाई की समस्या सामने आई। क्या उनको तो दवाई की समस्या ही कहां है, इसलिए मैं कहता हूं ये दफे मैंने कहा था इसी सभा में, तब भी लोगों ने मेरे से बहुत टोका टोकी की थी कि हमारे मुनिराजों को थोड़ा बहुत प्राणायाम करने की बात इसलिए है कि उनको दवाइयों के संपर्क ज्यादा नहीं लेना पड़े, इसलिए अपने को स्वस्थ रखना उनकी एक ड्यूटी है। माने ऐसी लाश करके कि जिसमें हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना हो, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। हम तो बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टरों के पास चले जाएंगे, दवाई ले लेंगे, वैद्य से कर लेंगे, दिन में 4 में ले लेंगे, रात में कहेगा तो रात में ले लेंगे, उनको ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इस बात को मैंने बहुत गहराई से अनुभव तब किया, एक दफे मैंने सुनाया था इस सभा में कि एक मुनिराज यहां आए थे, बहुत अच्छे थे, अच्छी प्रकृति के नेचर के थे, उनको बहुत ज्यादा कब्जियत हो गई थी, कब्जियत समझते हैं ना, बद्ध कोष्ठता बोलते हैं उसे संस्कृत में, पायल्स हो गए थे, पायल्स समझते होंगे सब, तो वे बहुत परेशान थे। तो वो इधर आए, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया और उनने कहा कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो तुम्हारा पहचान प्राकृत चिकित्सालय वाला जो डॉक्टर है उससे है, वहां पर एक डॉक्टर थे बड़े, उनका नाम शुक्लाल हैं, प्राकृत चिकित्सालय में सुखराम जी थे, बहुत अच्छे डॉक्टर बड़े, तो सुखराम जी को आप बुला लाओ। मैं प्राकृत चिकित्सा वालों से मैं कहूं कि मैं कुछ ले नहीं सकता, खाने में दवाई ववाई का वही बहुत सब पद मर्यादाएं थी ना, बहुत सार्थक वृत्ति वाले महाराज थे और वो कोई ऐसा कुछ भी कहीं से भी कुछ करना नहीं चाहते थे, और वो ये जानते थे कि हम अपन लोगों के बारे में जो परिचय है ना कि अपन उतना ज्यादा मुनि भगत नहीं है, लेकिन उनको मुझ पर भरोसा था, मुझे उन पर भरोसा था। मैंने बहुत ईमानदारी से सुखराम दास जी को लेके आया मैं, और मैंने उन्हें दिखाया, फिर भी सुखराम दास जी बोले कि मैं बताऊंगा तो इन्हें सब हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे क्या? मैं कहूंगा एक वो होता है ना उनका जिसमें बैठते हैं वो जल कटी स्नान करते हैं तब, अब मैं शब्द भूलने लग गया हूं, खासकर दुनियादारी के शास्त्रीय शब्द याद रहते हैं ये सब, वो तब में बैठ के गर्म पानी का सेक ठंडे पानी का सेक ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसी उन्होंने दो चार बातें, और मैं मिट्टी की पट्टी लगाऊंगा तो उससे जो गर्मी होती है पेट की वो मिट्टी सोख लेती है, तो मैं मिट्टी के प्रयोग करूंगा, तो ये कल करेंगे क्या? और समय पर जैसे आगे कहीं मैं व्यवस्था कर दूंगा, जहां ये कहें वहां वैसी, तो मेरा कहना तो नहीं ये नहीं कर, मैं तो इस पानी में बैठ गया तो हमारे देश स्नान का त्याग है, मैं तब मैं पानी में कैसे बैठ सकता हूं? माने आखिर उन महाराज ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, वो चले गए, वो बैठ गए, तो मुझको बहुत दुख हुआ। तो एक महाराज ने मेरे पर विश्वास करके वो मेरे पास आए, और उनकी तकलीफ करने में मैं कुछ भी मदद नहीं कर सका, इस बात का मुझे आज तक दुख है, और मैं कई दफे प्रवचनों में सुना चुका हूं। उनका नाम मैं शायद भूल गया, विजय सागर ऐसा था नाम कुछ था, वो यहीं के थे जहां के मुख्यमंत्री थे ना अपने भैरव सिंह शेखावत, उनके गांव से 2 मील उनका गांव था, मैं उनके गांव में भी गया था महाराज के, यहीं राजस्थान में सीकर की तरफ अपन जाते हैं ना उसके आगे, सीकर के भी आगे है उधर है गांव। मेरे कहने का मतलब मुनिराजों का जीवन तो कितना परम पवित्र है, कितना कठिन है, मतलब ये है, और वो इतना पहले से, तो उनको यदि अपने स्वास्थ्य का इस जिस बात में उन्हें ध्यान रख सकते हैं उसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो 50 बीमारियां लग सकती हैं, और जिनके इलाज की समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है, ये बड़ी बड़ी बीमारियों की बात तो समंतभद्र को भस्मक व्याधि हो गई थी, फलाने को ये हो गई थी, ये तो बड़ी बातें हैं, इसलिए सामने आती हैं रोजीना सुबह से शाम तक की, कितनी बीमार है, हम ये रूमाल लिए फिरते हैं, फिर पहुंचते, उनके पास तो कुछ नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, जुकाम तो उन्हें भी हो सकता है ना, बिना सूचना के नाक तो उनकी भी चबक सकती है ना, माने जो हमारे शरीर में हो सकता है वो उनके शरीर में वो सब हो सकता है ना, ये सब चीजें, इसलिए सब। तो किसी ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, वो ये समझ रहे थे कि मैं वो जो ध्यान वाले हैं वे प्राणायाम कराते हैं आसन लगवाते हैं ऐसी उसकी मैं सिफारिश कर रहा हूं, ऐसा उनको लग रहा था, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो भी उनको अपनी सात्विक वृत्ति वो करना चाहिए। मैंने देखा फिर एक दफे मैं सुधा सागर जी के पास गया था, तो वे आहार से आए थे तो वो एकदम कौन सा आसन होता है, वज्रासन, वो वज्रासन से बैठ गए और वो करीब 15-20 मिनट जब तक हमसे बात करते रहे तब तक वे वज्रासन से बैठे रहे। फिर मैंने ध्यान दिया तो और मुनिराजों को भी मैंने वज्रासन से बैठे देखा तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के और भी जो आसन हो उन्हें महाराजों को पता होना चाहिए और उनको उसका उनका प्रयोग करना चाहिए। माने वो कोई बुरी बात नहीं थी, मैं सिर्फ इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मुनिराजों की समाधि तो वो मुनिराजों के हिसाब से होगी, हम उसमें ज्यादा माथा नहीं मार सकते, इसलिए वो मुनिराज ही बताएं और मुनिराज ही करें, हम उसमें पंडिताई नहीं करना चाहते हैं, हम तो हमारा अपना भव हम कैसे सुधार सकते हैं। तो अपने लिए हम सोचें तो अपने लिए सोचेंगे तो हम जैसे जो होंगे ग्रस्त उनको भी काम आ जाएगी बात, यदि उनको श्रद्धा होगी सही बात समझनी होगी आत्मकल्याण करना होगा तो उनके काम भी आ जाएंगे, समझना ना। ये है, ये मैं ये कह रहा हूं कि बीच में मंगलाचरण आ गया, पढ़ लेना पढ़ने का था, उसका अर्थ भी पढ़ लिया, तो वो अमरचंद को ये पसंद नहीं था तो या तो उन्होंने ये गाथाएं हटा दी अथवा उनके पास उपलब्ध नहीं थी। देखो ये गाथा हटाने से वो संधि बैठ जाती है और रखने से नहीं बैठती है। अभी प्रकरण तो बदला ही कहां है, अभी तो वो ही चल रहा है ना, कौन जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पद्य तेम सो जान दी अपानम मोह खलु जादित स्वयं, तो वो मोह को वो उनका नाश को प्राप्त होता है तो दर्शन मोह चरित्र मोह। अब इसमें जो 83 और 84 में गाथा है इसमें यही तो बताया है कि मोह किसे कहते हैं, तो बात खत्म कहां हुई, वो मोह नाश हो जाता है, वो मोह क्या चीज नाश होगी उसका भी तो पता लगना चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम ध्यान दें तो कहीं भी मोह को उन्होंने ज्यादा समझाया नहीं है, ज्यादा नहीं किया, तो अब उन्हें वो मोह समझाना चाहिए ना। तो वो देखो पढ़ो गाथा है दोनों बहुत अच्छी है।
दब्बा दिए सुमूढ़ो भावो जीवस हबदि मोहति खुब्बदि तैनो चन्नो पप्पा रागं वदो संबा मोहेण बरागेण वा दोषेण बपरिण दस्य जीवस जायदि विभो बन्धो तम्हाते कंक वै दब्बा द्रव्यादि में जो मूढ़ता बह मोह उसके जोर से कर राग रुस पर द्रव में जिय छोब्द हो चहुं ओर से बंद होता विविद मोह रुछोब परिणत जीव के बस इसलिए संपूर्णता बेनाश करने योग्य है।
जिस चीज को जानने के लिए उनने प्रेरणा दी थी अब उसी का स्वरूप तो बता रहे हैं। द्रव्यादि में जो मूर्णता वह मुहे कितना साफ है, द्रव्यादि माने द्रव्य गुण और पर्याय, उन तीन की बात चल रहे थे ना, तो अकेले द्रव्यादि शब्द का प्रयोग किया तो आदि में गुण और पर्याय वो लेना, तो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो मूर्ता माने मूर्खता है ना समझी है तो उसका नाम मोह है, उसमें दर्शन मोह और चात्र मोह दोनों आ गया, क्योंकि ये बात चल रही है ना 80, 81 और 82 में गाथा के बाद 83 में गाथा है ना, तो दोनों मुंहों को एक साथ ले रहे कि द्रव्यादि के संबंध में द्रव्यगुण पर्याय के संबंध में जो अज्ञान है और उसी का नाम मूर्ता माने मोह है ना। द्रव्यादि में जो मूर्ता वह मोह है, और उसके जोर से, ये दर्शन मोह है, फिर उसके जोर से माने दर्शन मोह के जोर से कर राग रुष, ये जीव राग और द्वेष करता है। चारित्र मोह के भेद दो हैं, राग और द्वेष। तो जो कितना गाथा में है, द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुष, पर द्रव्य में ये जीव उसके जोर से मिथ्यात्व के बल से पर द्रव्यों में राग द्वेष करता है। एक लड़का भी प्रवचन कर रहा था तो वो यह क्या बोल रहा था, मैं पूरा ढंग से नहीं सुन पाया कि जीव अजीव ये दो तो वो एक जगह अलग कर रहा था और फिर आश्रवादी ये अलग हैं, जीव दो ये तो जीव में आ गए, ऐसा बोल रहा था। क्या बोल रहा, तुम लोगों को किसी ने नहीं सुना कुछ? फिर मैंने इसलिए ये भी कोशिश की कि इसका कमेंट्स करने वाला कमेंट्स करेगा तो वो जरूर इस चीज को छेड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, इसलिए मेरे को पता नहीं क्या था, पूरी बात मैंने सुन नहीं पाई क्या कहा था। द्रव्यादि में जो मूड था वह मोह उसके जोर से, कैसी सरल बिल्कुल, गद्य में पढ़ते जाओ, पद्य में पढ़ो चाहे गद्य में पढ़ो, है ना, कर राग रुष राग द्वेष करता है पर द्रव्य में, जिये ये जीव और क्षुब्ध हो चहुं ओर से, तो उसकी वजह से चारों ओर से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से एकदम क्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। बंद होता विविध विधि, अनेक प्रकार का बंद होता है, काय से मोह अरु क्षोभ परिणत जीव के, मोह और क्षोभ मन राग देश, मोह मन दर्शन मोह और चरित्र मोह, इन दोनों से परिणत जीव के क्या विविध प्रकार का बंध होता है, इसलिए संपूर्णतः नाश करने योग्य हैं। माने वो मोह कोई कुछ रखने लायक और कुछ नाश करने लायक हो ऐसा नहीं है, वो संपूर्णतः उसका नाश करना है। नहीं नहीं, पहले दर्शन मोह तो कर लेना, साथ मोह की बाद में सोचेंगे, ये कहेंगे कि नहीं अब तुम सोच तो एक साथ ही लो। वो कहते हैं श्रद्धा में कोई किस्त नहीं होती, चारित्र में किस्त हो जाती है। तो कहते हैं कि ये द्रव्यादि में जो मूढ़ता वह मोह उसके जोर से कर राग रुष और क्षुब्ध हो चहुं ओर से, है ना, इसलिए हमको राग का त्याग करने के लिए, क्षुब्धता से मिटाने के लिए ये संपूर्णतः त्याग हैं। एक दफे ये स्वीकार तो करो, यानी कोई राग त्यागने योग्य नहीं है ऐसा मत मानो। हमारी क्या आदत है, कभी सुबह शुभ राग करेंगे तो अशुभ राग त्यागने योग्य है, अशुभ राग करने योग्य है, और उसमें उपादेय बुद्धि बनी ही रहेगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से पहले से कहीं ना कहीं हम रास्ता खोजते हैं। और ऐसे मंद और तीव्रता में कसार मंद हो गई तो मान लो कसार करना यदि पाप है तो तीव्र कसार तीव्र पाप हुआ, तो मंद कसार पुण्य कैसे है, वो तीव्र मंद पाप होगा। अब समझ गए ना, तीव्र कसार में तीव्र पाप है तो मंद कसाय पाप नहीं होना कैसे हो जाएगी, वो मंद पाप होगा ना, लेकिन हम उसे मंद को मान लेते हैं। मैंने एक बात और कही थी, फिर कहता हूं, तीन भेद होते हैं ना, एक शुभ भाव अशुभ भाव और शुद्ध भाव, ये तीन हो गए, मतलब मूल में दो, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, अशुद्ध के दो भेद शुभ और अशुभ, और एक दूसरा एक शुद्ध भाव और विशुद्ध भाव और संकलित, एक तीन वो है, ये शुभ अशुभ और शुद्ध, और वो संकलित विशुद्ध और शुद्ध, वहां शुद्ध जाके दोनों में एक हो जाता है। तो हम क्या समझते हैं, वो संकलित दोनों में शुद्ध हो गया, अभी दोनों एक ही है, इसलिए ये शुभ वाला विशुद्ध के साथ बैठ जाएगा और अशुभ वाला संकलेश परिणाम के साथ बैठ जाएगा। लेकिन ये दो धाराएं बिल्कुल अलग हैं, इन्हें समझना चाहिए तो हमको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। वही हम उसका उदाहरण देते हैं, उस शेर का और सुअर का, जो मुनिराज के लिए एक बचा रहा था एक मार रहा था। जब वे लड़ रहे थे ना, तो उन लड़ने में एक के शुभ भाव थे एक के अशुभ भाव थे, लेकिन संकलेश परिणाम दोनों को था। कैलाश जी माने वो संकलेश परिणाम होना भी अच्छा नहीं है। अब क्या बात कर रहे, महाराज को बचाना अच्छा नहीं है? नहीं, महाराज को तो बचाओ, अच्छा है सब करो, लेकिन उसमें जो संकलेश परिणाम होगा उसे संभाल के रखने की बहुत बढ़िया चीज नहीं है, वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। ये बुद्ध स्वर्ग गया साहब गया होगा वो, लेकिन वो संकलेश परिणाम है तो जरा नीचे स्वर्ग गया होगा। आप समझ गए ना, देवगति में गया होगा, बिंतराधिक हो गया होगा। और वो तो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो संकलेश परिणाम से भी हमें बचना है। माने हम अच्छा काम करने में भी ऐसा काम हो सकता है जिसमें हमें पाप बन जाए। हम खुद देखते हैं अपने जीवन को, ऐसा कोई हमें खोटा काम नहीं दिखता है अपने जीवन में। पिछली कम से कम 70-75 वर्ष की हमको याद है, हमने देखा है जीवन कैसा रहा है, तो सारे जीवन में कोई ये सब महान अपराध जीवन में हुआ हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में ख्याल में ना, तो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक दिखाई, फिर भी हमें पाप बंद ही नहीं होगा है? अशुभ भाव तो हुआ ही होगा, आखिर ये खाने का भाव, पांच इंद्रिय के विषय भोगने का भाव, ये अशुभ भाव है ना है? और भी हमने जो अच्छे काम किए होंगे उनमें भी संकलेश परिणाम भी हुए होंगे, नहीं हो रहा है जल्दी नहीं हो रहा है ये काम, ऐसा नहीं हो जाए तो अच्छा है, है? मेरे कहने का बंद हुआ है कि नहीं, तो हमको इस बात को भी अच्छी तरह समझना चाहिए। ये फर्क इस बात का है, ये तो जो शुभ अशुभ भाव, वैसे ये भी चारित्री के भेद हैं, और वे भी चारित्र संकलेश विशुद्ध भाव भी। टोटरमल जी ने बहुत प्रयोग किया मुख्यमंत्री प्रकाशक में कि संकलेश परिणाम विशुद्ध परिणाम, और वो जो चिट्ठी है निमित्त उपादान की, और वो उनमें लिखा ना कि तूने विशुद्धता में शुद्धता का अंश माना कि नहीं माना, तो उनने शुभ में शुद्धता का अंश माना कि नहीं माना, ऐसा नहीं कहा। विशुद्धता में माने कसाय हमें शुभ भी होनी, शुभता भी होनी चाहिए और विशुद्धता भी होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि शुद्ध हो तो बहुत ही बढ़िया है, शुद्ध की तो होड़ होती नहीं है, लेकिन यदि हम उधर दूसरे कैडर में रहते हैं तो शुभ भी होना चाहिए और विशुद्ध भी होना चाहिए। हमने शुभ का ध्यान रखा और संकलेश परिणाम किया, माने अच्छा काम भी करना चाहिए अभिनंदन जी, और अच्छे काम में भी संकलेश नहीं करना चाहिए। आप मेरे से क्यों कह रहे हो, मेरे जीवन में तो ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे आप सब कराते हो काम, अच्छे बहुत अच्छा कराते हो, निस्वार्थ भाव से कराते हो, कोई आपको पैसे में से लेने का कोई विकल्प नहीं है, भगवान की भक्ति का काम है, बढ़िया काम है ना, तो शुभ भाव हुआ ना। अब फिर लोग लेट आते हैं, आते ही नहीं है समय पर, बैठते ही नहीं है, ये करते हैं, और परिणामों में संकलेश हो जाता है कि नहीं जाता। आज पहले नक्की करो, आप लोग समय पर आएंगे तो ही मैं ये करूंगा, कल से मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, होते कि नहीं हो जाते ऐसा कई दफे पंच कल्याणक में हो जाता होगा। तो कहते कि नहीं, हमको वो आप पंच कल्याणक कराने गए हैं, निस्वार्थ भाव से गए हैं, आपने अपना समय शक्ति दी है, तो उस वक्त वो परिणाम तो आपका शुभ है, लेकिन साथ में संकलेश हो रहा तुम्हें ही नहीं हमें भी हो सकता है ना, कि हम यहां से गए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रवचन करने गए, जनता लोग आएगी तो हम जनता को सुनाएंगे, तत्व की बढ़िया बात बताएंगे, ख्याल में आई ना, तो शुभ भाव तो है, लेकिन जरा सी देर हो गई, नहीं हो पाई, नहीं सभा ने नहीं सुना, उपेक्षा की, लोग नहीं आए, तो वहां पर संकलेश परिणाम हो जाते हैं। इसे तो हम अच्छा है नहीं देते, हमारी से सभा छोड़ के आए, कल से आप ऐसा करोगे तो नहीं। पंडित जी पे गुस्सा आ जाता है, इनने भी ऐसा समय रखा हमारे प्रश्न का, तुम हमारे भीड़ जोड़ने के लिए उपयोग करते हो, तुमसे लड़ पड़ते हैं। भीड़ भीड़ जोड़ने का नहीं, हमें तो क्रीम टाइम चाहिए, होता क्या नहीं होता। यानी मैं ये बता रहा हूं, हमें भी संकलेश परिणाम हो सकता है और तुम्हें भी हो सकता है, परिणाम शुभ रहने के बाद भी। तो ये मैं समझ लेना कि हमारा वो शुभ वाला भाव हमारे संकलेश परिणाम की सजा हमसे बचा लेगा, वो उसकी सजा तो हमें भोगनी ही पड़ेगी, उसके अनुसार जो पुण्य पाप का बंध होना होगा वो ही होगा। कि नहीं नहीं, हमारे हम तो उसके लिए किया, उसके हित के लिए किया, तुम्हें दूसरे के हित के लिए भी संकलेश परिणाम नहीं करना है। शांति से कह दो, दो दफे कह दो, बैठे मानते ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं है, आप नहीं समझते हो, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, अब तुम लातें भी चलाओगे? हम तो नहीं चलाएंगे, हम तो बातों से ही मनवाएंगे, जितनी बातों से मान लेंगे मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो इनका जे जाने हमारा, हम जाने, हम उस पर नहीं उतरेंगे। मेरा मतलब समझ लें, हम सबको मैंने अपने पे ही उदाहरण दिया, आप पे ही उदाहरण दिया और किसी पे नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों का जीवन बहुत पवित्र है, तो पवित्र है तो हमको पवित्र बनाए रखना चाहिए ना, उस पवित्रता का पूरा लाभ उठाना चाहिए ना, आत्मकल्याण के हित में भी। तो ये यही बात ये देखा ना, जा यदि विविधो बंधो तम्मा ते संख ही रब्बा, माने इनको क्या क्या संचितव्या, संक्षिप्त कर देना चाहिए, माने इन्हें फैलने नहीं देना चाहिए, यानी इन बंधों को छोड़ देना चाहिए। अपन कहते ना इनको संक्षिप्त कर देना चाहिए, कौन किसको, मोह और राग द्वेष को, पर यही चीज है भाई, इनको संक्षिप्त में करना यही असली धर्म है। बस हो गया, वैसे तो 9 बजने ही वाले हो गए, अभी जो आपको जो काम करना है करो।